भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिन में स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर
ओम शांति। पिताश्री ब्रह्मा बाबा की अद्भुत जीवन कहानी इस विषय पर संबोधन करने हेतु हमारे मध्य आदरणीय शीलू दीदी विराजमान हैं। आप सभी महान आत्माओं से हमारा नम्र अनुरोध है, एक हाथ के ताली से आप शीलू बहन जी का भी स्वागत करेंगे। विश्व के आदि पिता, आदि देव आदम, मनुष्य सृष्टि के प्रजापिता, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ साक्षात शिव परमात्मा के भाग्यशाली रथ महान त्यागी, महान तपस्वी पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने जिस समय समाज में और धर्मों में नारी को नर्क के रूप में माना जाता था, ऐसे समय में स्वयं शिव परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाकर नारी को स्वर्ग के देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। ऐसे महान पुरुष थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा। ये माताओं बहनों के लिए तो खुशखबरी है ही, क्योंकि स्वर्ग की देवी के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले पिताश्री ब्रह्मा बाबा की पालना शीलू दीदी ने भी ली है। आज उनके ही मुखारविंद से आप सुनेंगे कैसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में माताओं बहनों की कमिटी बनाकर समर्पित कर ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। सुंदर कहानी कैसे सिंध हैदराबाद से शुरू होकर माउंट अबू तक पहुंचा, ये सुंदर कहानी आप सुनेंगे शीलू दीदी के जुबानी।
ओम शांति। आप सभी इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस विशाल शांतिवन परिसर में पधारे हैं। यह विश्वविद्यालय हमें ईश्वरीय विद्या प्राप्त कराता है, जिसका दाता स्वयं परमात्मा है। परमात्मा ने यह केवल विश्वविद्यालय ही नहीं रचा है, लेकिन साथ साथ यह ईश्वरीय परिवार भी रचा है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक पिता की संतान हैं। तो यह विश्वविद्यालय भी है, परिवार भी है, साथ साथ यह एक बहुत बड़ा यज्ञ है। हम इसे यज्ञ कहते हैं। यह रुद्र भगवान शिव परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ रचा है, जिस यज्ञ में परमात्मा हम सबसे बुराइयों की आहुति चाहते हैं। तो यह विशाल यज्ञ कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और आज कहां तक पहुंचा है, पिछले 80 वर्षों की कहानी मैं आपको लगभग 80 मिनटों में सुनाना चाहूंगी। आप सभी भी मेरे साथ साथ रहना। अभी अभी आप सबने यह गीत सुना, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। किस लिए जन्म लिया, मानव को देव बनाने के लिए, नव युग का निर्माण करने, इस विश्व को फिर से स्वर्ग बनाने, परमात्मा शिव ने उनमें स्थान लिया। तो कौन थे वो दिव्य पुरुष और कैसे परमात्मा शिव ने उनको ब्रह्मा नाम दिया, यह एक अद्भुत जीवन कहानी है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने 1876 में अपना लौकिक जन्म पाया हैदराबाद सिंध के एक गांव में, उस समय तो भारत एक अखंड भारत था, सिंध भी भारत का ही हिस्सा था, और एक बहुत ही साधारण परिवार में आपने जन्म लिया। आपकी माताजी बचपन से ही गुजर गई थी, इसलिए माँ का वो सुख तो इतना पाया नहीं, लेकिन पिता ने ही इन्हें पाला पोषा। और एक छोटे गांव के स्कूल के मास्टर थे वे, तो कैसे बाबा एक साधारण परिवार में जन्मे और एक ही जीवन काल में इतने ऊंचे चढ़े, जो एक धनाढ्य हीरो का व्यापारी बन गए, ये एक अलग कहानी है। लेकिन कैसे फिर परमात्मा ने इनको माध्यम बनाया इस विश्व के परिवर्तन के लिए, वो एक जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी है। कैसे एक साधारण व्यक्ति को प्रजापिता ब्रह्मा ये टाइटल परमात्मा ने दिया, ब्रह्मा को रचयिता माना गया है, जिसके द्वारा परमात्मा ने सृष्टि रची। लेकिन ये संसार तो सदा से ही है, अनादि अविनाशी है, तो सृष्टि तो कोई ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई से सृष्टि बनती है, ये सदा थी है और रहेगी। लेकिन इसमें केवल युग बदलते हैं, और अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, तो सतयुगी दुनिया की रचना करने के लिए ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया, ब्रह्मा को रचयिता माना गया। तो सारी प्रजा का पिता, एक अलौकिक पिता के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा थे। कई लोग कहते हैं क्या ये आपके गुरु हैं? हम कहते गुरु नहीं है, यहाँ कोई गुरु की गद्दी नहीं है। गुरु की गद्दी होती तो एक गुरु के बाद दूसरा गुरु उस पर बैठता, और गुरु के गैर हाजिरी में उनके खड़ाऊ रखते, उस प्रकार तो यहाँ है नहीं। तो फिर ये आपके कौन है, क्या आप इनको भगवान कहते हो? हम कहते भगवान भी नहीं कहते, भगवान परमात्मा ईश्वर वो तो एक निराकार ज्योति स्वरूप सदाशिव है, लेकिन हम इनको हमारे अलौकिक पिता मानते हैं। लौकिक पिता तो हर एक का अपना अपना है, और पारलौकिक पिता परमात्मा वो तो सबका एक ही है, लेकिन ये न लौकिक है न पारलौकिक है, लेकिन अलौकिक है। अर्थात इस संसार में एक नया जन्म देने के लिए हमें निमित्त, हमारे निमित्त बने हैं। इनके द्वारा परमात्मा ने एक नया जीवन हमें दिया है, तो कैसे दिया है वो आज आप थोड़ा सुनेंगे। कैसे परमात्मा ने इनको निमित्त बनाया और एक बीज इन्होंने रोपा अपने तन मन धन का, और आज वो बीज एक वट वृक्ष की तरह हजारों सेवा केंद्रों के रूप में फैल रहा है। पांचों ही महाद्वीपों में 137 से भी अधिक देशों में ये फलता जा रहा है, जिसमें हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और आप जैसे लाखों परिवार इसमें नियमित विद्यार्थी हैं। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा? इनका पूर्व नाम दादा लेखराज था, लखीराज बाबू इस नाम से आप हैदराबाद सिंध में बहुत प्रख्यात थे, हीरों के व्यापारी के रूप में प्रख्यात थे। आपकी बहुत बड़ी शोरूम कलकत्ता में थी और आप हैदराबाद सिंध में रहते थे और अप डाउन करते थे। आपके जो ग्राहक थे वो बहुत बड़े राजा महाराजा थे, राजस्थान में अनेक राजाएं महाराजाएं उस समय राज्य करते थे, तो वो बाबा के ग्राहक थे और राजाएं इनको अपने महलों में बुलाते थे, क्योंकि रानी तो दुकान में नहीं जाएगी हीरों के गहने खरीदने, तो बाबा को बुलाते थे कि रानी को जो हीरों का गहना या जेवर पसंद हो आप उनको दिखाएं। और अक्सर करके ये राजा महाराजा बाबा को कहते थे कि आपके अंदर इतनी रॉयल्टी है, एक राजा से भी ज्यादा, भगवान को तो आपको राजा बनाना चाहिए था पर आप एक व्यापारी बन गए और हमारे साथ आपका यह व्यापार है। क्योंकि इतना रॉयल थे बाबा, राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना कोई कम बात नहीं थी, और उतना ही बाबा अंग्रेजों के साथ भी उठते बैठते थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज यहाँ राज्य करते थे भारत में। तो कलकत्ता से ही वो आते थे भारत में, तो अवश्य इनसे हीरों के गहने खरीदते थे। तो जितना ही बाबा धनवान थे उतना ही बाबा बहुत बड़े दानी थे। कोई भी उनके द्वार पर आता था कोई दान के बिना जाता नहीं था। परिवार भी इनका बहुत सुखी था, पांच बच्चे थे, तीन बेटियां थी, दो बेटे थे, और उनकी भी शादी हो चुकी थी लगभग। और जब इनकी उम्र 60 वर्ष की हुई तब इनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। धनी के साथ दानी, तो नाम तो बड़ा मशहूर था उनका, पर साथ साथ वो भक्त भी थे। कोई ऐसा भारत का मंदिर नहीं होगा जहां बाबा दर्शन करने न गए हो, यहां तक कि अमरनाथ की भी यात्रा की थी, सभी तीर्थों पर जाते रहे। लेकिन एक उनके जीवन में खोज थी सत्य को जानने की, ईश्वर को जानने की, हम कौन है इस संसार में, हम क्यों हैं, कहां से आए हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर ये भगवान की दुनिया है तो इतना दुख क्यों है, ये अलग अलग प्रकार के प्रश्न उनके मन में जागते थे। और बाबा अक्सर करके गुरुओं के पास ये प्रश्न पूछने जाते थे। कई गुरु बाबा के कांटेक्ट में आए और सबसे बाबा पूछते थे, लेकिन किसी से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला उनके अनुसार। भक्ति भी बहुत करते थे, शास्त्र भी बहुत पढ़ते थे, तो ईश्वर में बहुत ज्यादा आस्था थी, लेकिन विवेकवान भी थे, अंधविश्वास में नहीं थे, विष्णु के अटूट भक्त थे, कट्टर वल्लभाचारी पक्के वैष्णव थे, श्रीनाथ उनके इष्ट थे। तो विष्णु की भक्ति करते थे, सवेरे सवेरे नहा धोकर के गीता का पाठ करते थे, तब तक वो मुंह जूठा नहीं करते थे। ट्रेन में सफर करते समय भी नहा धोकर पहले गीता का पाठ और फिर कुछ और काम। तो इतनी उनके अंदर अटूट आस्था थी ईश्वर के प्रति, और उस आस्था को सम्मान देते हुए कैसे परमात्मा ने इनको चुना। तो एक दिन की बात है कि अचानक जैसे वो विष्णु की भक्ति में तल्लीन थे, उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। ये 1936 की बात है, आज से 80 साल पहले, जबकि आपकी आयु लगभग 60 साल की थी। तो बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा कि विष्णु चार भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सामने आकर उपस्थित हो गए, उनको दर्शन दिया और एक वरदान साथ में दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे जैसे हो। और विष्णु के कई रूप उनके सामने एक एक करके आते गए और सब ने एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। बाबा साक्षात्कार करके तो स्तब्ध रह गए, उनको समझ में नहीं आया कि ये जो मैंने दर्शन किया अपने इष्ट का, इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं इन जैसे कैसे हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ, इनका दास हूँ। भक्त तो यही समझते हैं, मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, यही हम आरती में भी गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पापी, कृपा करो भरता। तो ये तो उनको बहुत खुशी हुई कि मेरे इष्ट ने मुझ पर कृपा की और मुझे दर्शन दिए। लेकिन तत्त्वम, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तो मेरे जैसे हो, ये जब वरदान मिला तो बाबा को समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, मैं इन जैसे तो हूं नहीं। तो बाबा ने ये प्रश्न अपने गुरु से पूछा, जो उस समय उनके गुरु थे, बाबा ने उनसे ये प्रश्न किया कि इसका मतलब क्या है। तो गुरु ने जितना इस बात को समझा उसी अनुसार जवाब दिया कि हो सकता है कि भगवान को आपसे कुछ ऐसा महान कार्य करवाना होगा, जिसलिए कहा कि आप मेरे जैसे हो, क्योंकि मेरा कार्य आपको करना है। तो बाबा को लगा कि भगवान का मुझे ऐसा कौन सा कार्य करना होगा, अगर वो भी मुझे पता हो, मालूम पड़े, तो मैं तैयार हूँ, बस वो बताए मुझे करना क्या है। क्योंकि जैसे बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ, भिन्न भिन्न रूप उनके विष्णु के उनके सामने आते गए, वो दृश्य बाबा से भूलता नहीं था कि मुझसे क्या कराना चाहते, क्योंकि विष्णु को ही अपना इष्ट मानते थे, भगवान उनको ही मानते थे, उनकी पूजा करते थे। तो जब गुरु ने ये बात कही तो उनके मन में आया कि क्या मुझसे कराना चाहते हैं, वो मैं कैसे जानूं। तो गुरु ने कहा कि आप थोड़ा एकांतवास में चले जाएं, कोई अलग स्थान पर जाकर के आप और थोड़ा घोर तपस्या करें, अपने इष्ट के ध्यान में और बैठे, तो शायद आपको कुछ और संकेत मिल जाएंगे कि आपको ईश्वर का कौन सा कार्य करना है। तो बाबा बनारस चले गए। बनारस में बाबा के एक मित्र रहते थे जो बहुत उनके करीब थे, और वो अक्सर उनको आमंत्रण देते रहते थे कि आप यहाँ आकर के कुछ दिन विश्राम कीजिए। तो बाबा बनारस चले गए और विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहते थे, सुबह भी शाम भी। तो कैसे एक दिन बाबा को कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा एक भयंकर विनाश। तीन रूप से विनाश, एक और हथियारों द्वारा विनाश, अस्त्र शस्त्रों द्वारा विनाश, तीर कमान और बंदूक और तलवारें और न जाने क्या क्या, जिनसे बाबा ने देखा इतनी हिंसा और लोग मरते जा रहे हैं, खून की नदियां बहती जा रही है, एक सिविल वॉर गृह युद्ध का बाबा ने रूप देखा। और देखते ही देखते बाबा ने देखा सब कुछ खत्म और सब मर चुके हैं, मुर्दा घाट बन गया है और खूने नाहक खेल चला। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा को दूसरा विनाश का दृश्य दिखाई दिया जिसमें अणु युद्ध दिखाई दिया। अणु युद्ध, बॉम्ब्स धरती पर गिर रहे हैं और जहां बॉम्ब्स गिर रहे हैं वहां इतनी आग निकल रही है कि देखते ही देखते सब कुछ आग की चपेट में चला गया। और फिर बाबा ने देखा प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, कहां एकदम अकाल, कहां तो इतने सारे मानो पांचों ही तत्व इतना कहर मचा रहे थे जो बाबा से सहन नहीं हुआ। और बाद से बाबा ने कहा बस करो बस करो, मैं ये सहन नहीं कर सकता हूँ, क्या ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी? क्योंकि तीन रूपों से विनाश देखा, एक ग्रह युद्ध, एक अणु युद्ध और तीसरा प्राकृतिक आपदाएं। और देखा अंत में कि सब कुछ जलमग्न हो गया, जैसे प्रलय जैसी स्थिति बाबा ने देखा, कोई भी एक बचा नहीं, ऐसे अनुभव किया उसने। तो बाबा को तो बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि हे भगवान, ये दुनिया क्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी, फिर आपने रची क्यों? नेचुरली प्रश्न उठता है कि अगर ये सब नष्ट हो जाने वाला है तो फिर भगवान ने ये संसार बनाया ही क्यों? अब ये फिर कौन जवाब दे? और फिर भगवान को आपसे कुछ कार्य कराना है, ये भी तो जवाब नहीं मिला उनको। तो प्रश्न तो वही का वही रहा, और ही कंफ्यूजन हो गया कि ये दुनिया तो ऐसे खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन बाबा के अंदर इतना बड़ा वैराग्य आ गया, जो उस वैराग्य के कारण बाबा को अभी और धंधा करने की इच्छा नहीं जागी। सोचा बस ये सब खत्म करते, पर भगवान मुझे ये बताओ कि क्या करना है मुझे उसके लिए। तो कैसे एक दिन बाबा को परम धाम का साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति का एक बड़ा महतत्व देखा और उसमें छोटे 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 सितारे देखे। और धीरे धीरे बाबा ने देखा वो छोटे छोटे सितारे, एक बड़े शक्तिशाली सितारा था उसके करीब से वो आते गए नीचे उतरते गए, नीचे आते गए और धरती पर पहुंचे। और जैसे धरती पर वो सितारा पहुंचा, एक एक सितारा एक एक देवी और देवता का रूप धारण करता गया। और देखते ही देखते बाबा ने देखा कि सारी धरती जो एकदम जलकर राख हो गई थी या प्रलय हो गई थी, सब कुछ नष्ट हो गया था, वो फिर से एक सुंदर हरा भरा संसार बनने लगा। और चारों ओर छोटे छोटे देवी देवताएं, बाल गोपाल, श्री कृष्ण, ये सब रास करते हुए बाबा को दिखे। और प्रकृति का एक अति सुंदरतम स्वरूप बाबा ने देखा। बाबा तो देखते ही रह गए कि ये ऐसी सुंदर दुनिया। और एक आवाज उनको आई कि लखीराज उठो जागो, ऐसी सतयुगी दुनिया तुमको बनानी है, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद ऐसी दुनिया आएगी। बाबा तो देखते ही रह गए। और फिर उसी दृश्य में बाबा ने एक और दृश्य देखा, एक सोने का महल जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और लक्ष्मी और नारायण विश्व महाराजन अपने सिंहासन पर बैठे हैं और धीरे धीरे उठकर अपने महल से बाहर आकर आंगन में विचरण कर रहे हैं। इतना सुखद स्वरूप था, इतनी खुशहाली थी, इतना आनंदमय वातावरण था और उसी के बीच एक आवाज आकाशवाणी बाबा को बार बार आती रही, लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद ऐसी श्रेष्ठ दुनिया सतयुगी दुनिया आने वाली है और आपको इसके लिए निमित्त बनना है, ऐसी दुनिया आपको बनानी है। अब ये काम भगवान ने इनको दिया। तो जब ये आवाज उनको बार बार गूंजती रही कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, तो जब बाबा ध्यान से नीचे आए तो यही आवाज गूंजे, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, इसलिए उठो जागो, उठो जागो। तो बाबा के मन में प्रश्न उठा, ऐसी दुनिया मुझे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा और उसके लिए करना क्या होगा वो भी तो पता हो, कैसे बनाऊंगा और उसके लिए क्या करना होगा और मेरे पास ऐसी क्या शक्ति है जो मैं एक दुनिया को नया बना दूंगा, सतयुग के देवताएं सृष्टि पर आ जाएंगे, ये मैं कैसे करूंगा। हे भगवान, ये कार्य तो बहुत बड़ा है पर ये कैसे करूंगा वो भी तो आप बताएं। तो बाबा के मन में प्रश्न के पीछे प्रश्न और ही उभरते गए, लेकिन अब उसको ये भी जवाब चाहिए था। फिर कैसे बाबा ने ये दृश्य सब देखने के बाद इतना वैराग्य आ गया, सारे संसार से वैराग्य आ गया कि भगवान को मुझसे कुछ महान कार्य कराना है, अब मुझे अपना धंधा वाइंड अप करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो बाबा बनारस से कलकत्ता गए, अपने जो उनके भागीदार थे उनको ये सब बातें बताई कि ऐसे भगवान मुझसे कुछ और कार्य करवाना चाहते हैं, क्योंकि बाबा की दृष्टि बदल गई, सोच ही बदल गए। जो हीरे जवाहरात के सारे जेवर थे, बाबा को तो ये सब पत्थर दिखाई देने लगा। अब पत्थरों का व्यापार क्या करेंगे बाबा। तो अपने पार्टनर को समझाया कि अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता, आप मुझे छुट्टी दें, मैं अपना धंधा वाइंड अप करूं और जितना मेरा हिस्सा है मैं ले लूंगा और आप ये दुकान संभालो। तो अपने पार्टनर को समझा बुझाकर बाबा वापस कलकत्ता से हैदराबाद चले गए। उस समय बाबा के लौकिक में पोतरे का जन्म हुआ था, तो घर में सब इतनी खुशियां मना रहे थे कि पिताजी आएंगे, दादाजी आएंगे और हम एक ऐसी बड़ी पार्टी देंगे क्योंकि पोतरे का जन्म हुआ है, बहुत बड़ी बात है। तो राजाओं महाराजाओं को बुलाना है, अंग्रेजों को बुलाना है, पार्टी तो बड़ी चीज होती है। और उस पार्टी में बाबा कभी भी शराब नहीं देते थे, पार्टी जरूर देते थे लेकिन कोई भी नॉन वेज खाना, शराब, ये सब बाबा कभी नहीं देते थे, क्योंकि खुद पक्के वैष्णव थे तो किसी को ये नहीं खिलाते थे। तो जैसे बाबा अपने घर में पहुंचे, इतना बड़ा साक्षात्कार करके कलयुगी दुनिया के विनाश का, सतयुगी दुनिया का, तो एक वैराग्य आने के बाद बाबा का सारा व्यवहार ही बदल गया। उनके वस्त्र भी बिल्कुल साधारण हो गए, धोती कुर्ता सफेद, बिल्कुल जैसे वैरागी, बिल्कुल दुनिया से न्यारे। उनकी निगाहें भी दुनिया को देखते हुए जैसे नहीं देख रही है, ऐसी स्थिति। अब कहां परिवार वाले इतने खुश थे कि हम पार्टी बनाएंगे और यहाँ तो बाबा तो इतने वैरागी हो गए थे, तो मानो उनका जीवन ही बदल गया। तो हिम्मत ही नहीं पड़ी अब परिवार वालों को, बाबा को कुछ कहने की भी कि हम कुछ पार्टी करेंगे, क्योंकि बिजनेस भी वाइंड अप कर ली थी और बिल्कुल सिंपल होकर के वापस लौटे थे। तो जब बाबा को उनके परिवार वाले देखते थे तो जरूर आश्चर्य खाते थे कि जरूर इनको कुछ ऐसा मिला है, अंतर की इनको कुछ ऐसी प्राप्ति हुई है, क्योंकि बाबा एकांत में रहते थे, बिल्कुल शांत रहते थे, ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, अपने ध्यान में रहते थे। तो कैसे एक दिन की बात है कि बाबा को ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। ये सब 1936 की बात है, जब उनकी आयु 60 वर्ष की थी और बाबा ने देखा एक सुंदर प्रकाश, दिव्य प्रकाश, इतना प्रिय वो अनुभव बाबा को हुआ और जैसे देखा कि वो प्रकाश इतना शीतल भी है और इतना शक्तिशाली भी है। और धीरे धीरे वो प्रकाश उनके निकट आया और निकट आते आते इतना निकट आया जो बाबा ने देखा कि वो शक्ति, वो प्रकाश उनके अंदर चला गया, अंदर में चला गया। ये बाबा ने देखा, अनुभव किया कि वो शक्ति अंदर गई इनके अंदर। अब क्या था ये उनको समझ में नहीं आया, पर वो शक्ति जैसे उनके अंदर चली गई। और फिर बाबा की आंखें तो बंद थी, उनके परिवार वाले बाबा को देखते रहे क्योंकि चेहरे पर इतनी चमक थी, ये ललाट इतना चमक रहा था, आंखें बंद थी और चारों ओर लाइट ही लाइट। एक एक विशेष आभा उनके परिवार वालों को दिखाई दी और जैसे और करीब गए उनके तो देखा बाबा के होंठ हिल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। तो और नजदीक गए सुनने के लिए तो आवाज में क्या शब्द थे, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं निज आनंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। अब ये उनकी उनके मुख से आवाज निकली और वो आवाज बाबा की नहीं थी, जैसे एक बहुत गहरी आवाज, कोई ऊपर से आई हुई शक्ति उनके मुख से बोल रही है। अब घर वाले तो सब देखते रह गए, सुनते रह गए, उनको समझ में तो कुछ आया नहीं। तो जब बाबा ने आंखें खोली तो आंखें भी एकदम चमक रही थी, बहुत तेज था आंखों में और चेहरे पर बहुत प्रकाश था। तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया, आप तो ऐसे तल्लीन थे और ये इतने गहरी आवाज में शब्द निकल रहे थे, ये सब क्या था। तो बाबा ने इतना ही अपना अनुभव सुनाया कि कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी और वो प्रकाश, वो शक्ति इतनी तेजोमय थी पर उतनी प्यारी थी और वो मेरे नजदीक आती गई आती गई आती गई और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर समा गई, बस आगे मुझे कुछ पता नहीं है, बस इतना ही उसने कहा। और फिर बाबा उसी नशे में चले गए, जैसे परमात्मा की शक्ति का अनुभव वो अभी भी कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ, एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ, बाबा को जो देखते थे वो देखने वालों के आगे मानो एक जादू सा अनुभव होने लगा, क्योंकि वो साधारण जो सफेद वस्त्रधारी धोती कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति वो बदल करके श्री कृष्ण रूप सामने खड़ा है, ये लोग देखने लगे। अब जब ये देखने लगे तो जिन लोगों को कुछ इस पर विश्वास नहीं हो रहा था वो तो ग्लानी करने लगे कि एक दादा लेखराज है, उसके पास कोई ऐसा जादू है जो लोग उनके सामने जाते उनको उनसे कृष्ण के दर्शन होते हैं, ये जादू है इसके पास। अब बाबा कहते थे ये मेरा तो कोई जादू नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाबा गीता का पाठ करते थे रोज सुबह, गीता का पाठ जैसे पहले करते थे अभी भी वही करते थे, लेकिन ये कुछ अलग ही कुछ चमत्कार जो हो रहा था ये बाबा को खुद भी समझ में नहीं आया, क्योंकि यह ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही थी। बाबा ओम की ध्वनि करते थे और जैसे ओम की ध्वनि करते थे तो जितने भी भाई बहने सभा में बैठे होते थे वो ध्यान में चले जाते थे और श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते थे। कुछ तो बाबा से करते थे, कुछ ध्यान में जाकर के श्री कृष्ण की दुनिया में पहुंच जाते थे। ऐसा विचित्र अनुभव लोगों को होने लगा तो मानो साक्षात्कारों की धूम मच गई, एक क्रांति हो गई। इतने तक ही नहीं, लेकिन घर बैठे भी लोगों को साक्षात्कार होने लगे। जैसे घर में अभी आराम कर रहे हैं, सोए हुए हैं, और जैसे नींद में ही अर्ध निद्रा अवस्था में उनको अनुभव होते थे श्री कृष्ण की दुनिया, वो रास कर रहा है श्री कृष्ण, और कैसे श्री कृष्ण के तरफ आकर्षित वो हो रहे हैं जो दर्शन करते थे। लेकिन श्री कृष्ण पीछे चला जाता था और ये बाबा सफेद वस्त्रधारी आगे खड़ा हो गया, ऐसे देखते थे, और श्री कृष्ण उनको इशारा से कह रहा है कि अगर मेरे से मिलना है तो पहले इनके पास जाओ। जैसे इनको इनके पास जाएंगे तब मेरा दर्शन आपको होगा, मेरे पास आप आ सकेंगे। अब ये कौन है ये तो पता नहीं था कई लोगों को, परंतु ये क्रांति इतनी हो गई साक्षात्कारों की जो एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई। अमेरिका के टाइम मैगजीन में ये न्यूज आई थी उस समय, आज से 80 साल पहले 1936 में, कि एक दादा लेखराज है, उसके पास एक चमत्कारिक शक्ति है, उनसे श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो लोग सुन करके तो बहुत जाने लगे, बहुत जाते थे, सत्संग बाबा कराते थे। तो पहली क्रांति थी साक्षात्कारों की। दूसरी क्रांति थी कि उसमें भी विशेष महिलाएं, माताएं, कुमारियां वो ज्यादा साक्षात्कार करती थी, क्योंकि उस समय नारियों के ऊपर बहुत बड़ी बंदिश थी। नारी मानो कि उसका कोई समाज में स्थान नहीं था, चार दीवारों में कैद रहती थी, गृहस्थी का ही बोझ ढोती थी, और उनके जो पति थे सिंधी लोग बहुत धनवान, उनकी बिजनेस सारी दुनिया में, वो तो घूमते रहते थे दुनिया भर, और उनकी पत्नी तो घर में चार दीवारों में बस बच्चों को ही पालना करना है, यही उनका एक ही ध्येय था। तो कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं, स्त्री को नारी को इतना अंकुश में रखते थे, इतना उनका शोषण होता था, पर्दे नशीन भी रहती थी, ये सब आते थे। और ऐसे समाज में परमात्मा शिव ने बहनों माताओं को साक्षात्कार कराए और ये अब बाबा के पास सत्संग में जाने लगी। एक दूसरी क्रांति हुई। अब कैसे उस सत्संग में कौन कौन आते आए ये भी एक अलग इतिहास है। तो ये इतिहास है ओम राधे का। आपका नाम वैसे राधे था, आप बहुत माहिर थी, होशियार थी, अपने स्कूल स्टडीज में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, पढ़ाई के साथ साथ कई आपने अवार्ड्स लिए थे, नृत्य कला, संगीत कला, गायन कला में बहुत होशियार थी और बहुत नाम था इनका हैदराबाद सिंध में। इनके पिता भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन अचानक बिजनेस में उनको ऐसा घाटा पड़ा जो देवाला मारा और अचानक उनका हार्ट फेल हो गया। तो उनके मरने के बाद इनकी जो माँ थी वो तो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उस समाज में पुरुष प्रधान समाज था, तो स्त्री का तो वैसे ही कोई अस्तित्व का कोई महत्व नहीं था, और उसके ऊपर भी अगर वो विधवा बन गई तो लोग तो उनके प्रति और ही घृणा करते थे, उनके नजदीक भी नहीं आते थे और न उनको अपने नजदीक आने देते थे। और अगर कोई भूल से भी उनकी दुकान के पास कोई विधवा गई तो वो बाहर से उनको भेज देते थे और फिर पानी छिड़क देते थे कि कहीं अपशगुन ना हमारे दुकान पर आए आदि आदि, यानी इतना तिरस्कार। तो अब जब इनके पिता की डेथ हुई और ये तो काफी मॉडर्न टाइप थी, अवार्ड लेती थी, नामी ग्रामी थी स्कूल में, तो इनकी माँ सारा दिन रात रोती रहती थी, काले कपड़े पहन के खुला बाल करके स्यापा करना, इतना रोती थी जो इसकी बेटी राधे ये देख करके सहन नहीं कर सकी कि आखिर मेरी माँ इतना क्यों रो रही है, ये तो हर एक जो जीव संसार में आया एक दिन तो मरना है, पर इतना सब क्यों। तो इनको ये पसंद नहीं था। तो कैसे, किसने इनको कहा कि आप अपनी माँ को बाबा के पास ले जाओ, इतना दुख जो उनको जीवन में है, वहां जाएगी उनको कृष्ण का दर्शन होगा तो कम से कम उनको शांति मिलेगी। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत हो गए एग्जाम्पल्स है। तो ये जैसे अपनी माँ को बाबा के पास ले गई, माँ ने बाबा को देखा, बस देखते ही श्री कृष्ण का उनको साक्षात्कार हुआ बाबा से, बस ऐसे उनको चिपक गई जैसे मैंने तो अपने भगवान को पा लिया, क्योंकि वो भी कृष्ण की भक्ति करती थी। अब लोगों ने सोचा ये क्या, ये कैसा, ये पर नारी और ये ऐसे कैसे उनको इस प्रकार से उनको चिपक गई, क्योंकि वो तो कृष्ण देखती थी, वो तो उनको एक पर पराया पुरुष या पर पुरुष ये तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो अपने ध्यान मग्न अवस्था में थी और बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाबा पर कलंक लगते थे, इतने कलंक कि वो लोग कैसे कैसे कहते थे कि एक दादा लेखराज है, उसको वो अपने आप को कृष्ण कहलाता है और उसको 300 रानियां मिली है, वो कहता है मुझे 16,108 रानियां चाहिए। अब वो कहता है मैं तो कभी नहीं कहता ये मेरी रानियां हैं, ये तो सब भक्त आत्माएं हैं, सत्संग करने आते हैं। बाबा गीता का पाठ करने के लिए गीता पुस्तक उठाते थे और गीता पुस्तक खोले खोले शिव परमात्मा उनमें प्रवेश होकर के वाणी चलाना शुरू कर देते थे और बहने सुनते 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 ध्यान में चली जाती थी। तो एक तरफ साक्षात्कारों की धूम और दूसरी क्रांति की कुमारियां माताएं वो ज्यादा आने लगी, पर पति लोग तो विदेशों में रहते थे, वो तो वहां रहते भी नहीं थे, कभी कभी आए और फिर चले गए, वे तो बिजनेसमैन थे। तो कैसे बाबा के आगे ये बातें भी आई, लेकिन बाबा कहते थे ये मेरी ताकत नहीं है, मैं तो जैसे रोज सत्संग करता हूँ, खुद गीता पाठ करता हूँ, वैसे ही कर रहा हूँ, पर ये कौन शक्ति मेरे द्वारा कर रही है ये मुझे मालूम नहीं। शिव परमात्मा को कोई उस समय पहचाना भी नहीं कि वो उनके द्वारा ये कार्य कर रहे हैं। और फिर शिव परमात्मा ने क्या और युक्ति रची, शिव परमात्मा ने इनके द्वारा सबको आदेश दिया कि अब अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है, पवित्र और योगी। उस समय लगभग उस समय लगभग कुछ 200-300 बहने थी जो समर्पित रूप से अपना जीवन जैसे बाबा को समर्पित कर दिया था, क्योंकि बाबा तो कुछ नहीं कहते थे लेकिन वो आकर के बस हम तो यहीं रहेंगे यही कहते थे और बाबा के पास आकर के समर्पित हो गई। तो कैसे कैसे समर्पित हुए वो मैं आपको बताना चाहूंगी आप और आगे। तो ये दादी प्रकाशमणि है जो इस संस्था की 38 साल तक मुख्य प्रशासिका रही, आप जब यहाँ इसमें आई तो 14 साल की थी, और 14 साल 15 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, 10वीं कक्षा पढ़ती थी, आपको सुबह सुबह कृष्ण का दर्शन हुआ और श्री कृष्ण ने कहा इनको कि मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ, तो बाबा का चित्र जैसे सामने आया। और बाबा को तो जानती नहीं थी ये, इनके पिताजी ज्योतिषी थे और पिता ने इनको कहा था कि तुम तो अपना जीवन कृष्ण को अर्पित करोगे, तुम्हारा जीवन पवित्र योगी जीवन होगा और तुम अपना जीवन उनको अर्पित करोगे। ये जैसे उसने अपनी बेटी को बता दिया था। और ये बहुत भक्ति करती थी कृष्ण की, इतनी भक्ति करती थी जो बात मत पूछो। कृष्ण सदा उनके साथ था। पिता ने कहा तुम तो मीरा की तरह हो, जैसे मीरा को सदा कृष्ण की मूर्ति साथ होती थी वैसे इनको भी कृष्ण से बहुत प्यार था। तो सवेरे सवेरे इनको ये साक्षात्कार हुआ, लेकिन किसी ने किसी को बताया नहीं। और दिन में जब स्कूल गई तो उस समय तो एक वातावरण फैल गया था, आवाज चारों ओर लड़कियों के बीच में कि एक दादा लेखराज है, उनके पास जो जाता उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, चलो हम भी चले, हम भी चले, हमको भी कृष्ण के दर्शन होंगे। तो और फिर इसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, पहले अपने पिता से पूछूंगी। तो जब पिता से इसने पूछा तो इनके पिता से पूछने से पहले ही इनके पिता ने इनको कहा कि बेटी यहाँ दादा लेखराज एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके वहाँ जाने से कृष्ण के दर्शन होते हैं, तुम वहाँ जाकर के देख कर आओ क्या होता है, तुम भी तो कृष्ण की बहुत भक्ति करती हो। अब इसने सवेरे जो साक्षात्कार किया वो पिता को बताया नहीं, और ये भी नहीं मालूम था कि ये वही चीज है। तो पिता के कहने पर वो अगले दिन जैसे ही गई बाबा के सत्संग में तो बाबा को देखा क्या, वही स्मृति आ गई कि यही तो मैंने देखा था, और एकदम से ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण का साक्षात्कार इसने किया। अब इनके पिता को तो बाबा जानते थे, तो बाबा ने इनको कहा कि तुम्हारा जीवन तो तुम्हारे पिता ने कहा है कि भगवान को श्री कृष्ण को अर्पित है, तो क्या तुम अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करोगी, तो पिता से चिट्ठी लिखा के लाओ कि मैं अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करती हूँ। उस समय ये इस प्रकार की आवाज थी, तो पिता ने तो इसको सहर्ष चिट्ठी लिख के दी कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पण करता हूँ। ऐसे बहुत सारी बहनें थी। और उस समय बाबा ने एक स्कूल खोला हुआ था, वो भी एक साथ साथ चलता था, जिसमें बाबा ने ये लक्ष्य रखा था कि स्कूल में जो टीचर पढ़ाएगी वो नौकरी के हिसाब से नहीं लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान देगी और समर्पित होगी कृष्ण को। बस वही धुन थी उस समय, अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करेगी, तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ाएंगी। तो बाबा ने दादी प्रकाशमणि जिनका नाम रमा था उनसे पूछा कि आप ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगी, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, गीता का ज्ञान, क्योंकि गीता का ज्ञान, गीता इनको कंठस्थ थी और कृष्ण की तो भक्ति करती थी। तो बस अगले दिन से वो स्कूल नहीं गई और बाबा को समर्पित हो गई। तो ऐसे लगभग 300 बहनें, जिसमें कुछ परिवार भी थे कुछ भाई भी थे, वो सारे के सारे समर्पित हो गए। और एक प्रतिज्ञा शिव परमात्मा ने उनसे कराई कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब ये सब परमात्मा की शक्ति थी, ये किसी मनुष्य की शक्ति काम नहीं कर रहे थे। हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब जब ये प्रतिज्ञा की तो लोगों को कुछ संकोच हुआ, विरोध किया, ऐसे कैसे प्रतिज्ञा कर ली, तो वो छोटी है, ये छोटी उम्र में प्रतिज्ञा कैसे किया कि हम योगी बनेंगे पवित्र बनेंगे। तो बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये तो परमात्म शक्ति कार्य कर रही है, और मुझे भी परमात्मा ने ही कहा है कि अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है, तो मैं भी तो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अपने परिवार के साथ ही थे बाबा, कोई परिवार से अलग तो थे नहीं, सब एक ही परिवार होकर के रहे, लेकिन ईश्वर का कार्य को कौन रोक सकता है। तो परिवार बढ़ता गया और कैसे बाबा इस सारे ग्रुप को फिर कराची ले गए। हैदराबाद सिंध तो छोटा सा स्थान था और कराची बड़ा शहर है, तो वहां पर बाबा ले गए। और कैसे कराची में ये बहनें बहुत यंग थी, सबसे जो बड़ी आयु की होगी वो तो 20-21 साल की होगी। दादी जानकी जी जो इस समय हमारी मुख्य प्रशासिका है वो उस समय 20-21 साल की थी और 80 साल हो गए, माना इस समय वो 101 साल की है। तो अभी वो मुख्य प्रशासिका है, वर्तमान समय वो लंदन में है और 22 तारीख आएंगी लंदन से, इसीलिए यहाँ पर वो नहीं है। तो कैसे ये सब यंग सिस्टर्स सवेरे सवेरे कराची में क्लिफ्टन बीच पर जाते थे, वहाँ सागर का किनारा है कराची में, और वहाँ जाकर के एक्सरसाइज करते थे और तपस्या करते थे और बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर। तो 1937 से लेकर 1950 तक 14 साल ये दुनिया के सब झमेलों से दूर बिल्कुल तपस्या करने लगे एकांत स्थान में कराची में। और इन्हीं 14 सालों के बीच में दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन क्या आया, ये 1937 से शुरू हुआ इनका अंदर तपस्या करना। तो 1939 दो साल के बाद दुनिया में विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस दूसरे विश्व युद्ध में जो 6 साल तक चला, 39 से लेकर 45 तक, 6 साल तक उस विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए, चारों ओर इतनी तबाही हुई, लाखों लोग तो जैसे सिविल वॉर का रूप पूरी दुनिया में फैल गया था। और वो समाप्त तब हुआ युद्ध जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी जापान पर 2 बम गिराए, और वो जो 2 बम 2 शहरों पर गिराए उससे पूरे शहर के शहर नष्ट हो गए। और उन्हीं दिनों में बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप भी होते रहे। क्वेटा एक शहर पाकिस्तान में है, वो तो पूरा ऐसा भूकंप आया पूरा शहर का शहर खत्म हो गया। सुनामी भी उस समय बहुत आई, बहुत सारी आपदाएं आई। तो बाबा से उस समय पूछते थे शिव परमात्मा से कि बाबा ये सब जो संसार में हो रहा है क्या यही विनाश है, क्योंकि अणु युद्ध भी हुआ, मानो बॉम्ब गिराया तो जापान ने सरेंडर कर दिया तो विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका जीत गया। तो बाबा ने कहा ये अंतिम युद्ध नहीं है, अभी तो ये रिहर्सल है, इनसे तो बहुत बड़े बड़े बॉम्ब बनेंगे। फिर जो और विश्व युद्ध हुआ सोचा क्या यही अंत है, बाबा ने कहा नहीं ये तो रिहर्सल है। तो सिविल वॉर भी रिहर्सल का रूप था, इसी प्रकार अणु युद्ध भी रिहर्सल का रूप था, प्राकृतिक आपदाएं भी रिहर्सल का रूप थी, फाइनल से पहले रिहर्सल होती है। तो वो रिहर्सल ही इतना भयंकर था, आप सोच सकते हैं कि जब फाइनल होगा वो कैसा होगा। लेकिन ये तरुण बहनें 14 साल बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर थी। और उसी समय कैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को कहा देश छोड़ो देश छोड़ो, उसका आंदोलन चालू किया। कल ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इसका जय घोष किया, जो वो 75 साल पहले भारत से अंग्रेज देश छोड़ो के जो नारे लगाए थे वो 75 साल हुए कल। और कल जो और जो बहुत ये सारे फ्रीडम फाइटर्स उस समय थे देश की स्वतंत्रता के लिए जो लड़े और जेलों में गए, उन सब जो भी बचे हुए 100 जने अभी तक थे जिनका सम्मान किया कल नरेंद्र मोदी जी ने, तो मानो एक बहुत बड़ी बात थी कल का जो इतिहास था उसमें। खास कल जिस जो शहीद हुए थे पंजाब के, कौन शहीद, भगत सिंह, तो उनका वो वो भी था, तो मानो कि 75 साल उसको हुए और 70 साल इस साल भारत की आज़ादी को होंगे, तो कैसे 70 साल की आज़ादी, ये 15 अगस्त अभी आ रही है थोड़े दिनों में, तो उसके ऊपर बहुत कुछ कल रैलियां भी निकली, बहुत कुछ हुआ, तो कहने का भाव है कि तो उस समय भारत छोड़ो के नारे भी बुलंद हुए और कैसे 1947 में आखिर अंग्रेज गए जरूर लेकिन भारत के दो टुकड़े करके गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग किया और सिंध कराची हैदराबाद ये सब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन ये संस्था तो वही थी और उस समय कितनी बड़ी सिविल वॉर हुई, गृह युद्ध हुआ, खून की नदियां बही, वो भी इतिहास हमारे सामने है, तो ये संस्था वही थी लेकिन शिव परमात्मा का आदेश था कि अभी यहीं रहना है और जब आदेश मिलेगा उसके बाद भारत में जाना है, क्योंकि भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनना है, भारत ही विश्व को शांति का संदेश देगा, भारत में ही फिर से दूध घी की नदियां बहेगी, मानो भारत ही सतयुग था, स्वर्ग भूमि थी, श्री कृष्ण की दुनिया यही भारत, तो परमात्मा का अवतरण स्थान भी भारत, तो फिर जब 1950 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था 1950 में, उसके बाद शिव परमात्मा का आदेश हुआ कि अभी भारत में जाना है, तो कैसे 14 साल की तपस्या में बाबा और मम्मा इतनी तपस्या करते थे, मम्मा तो जब आई तो 16 साल की थी और बाबा 60 साल के थे, लेकिन शिव परमात्मा ने इनको टाइटल दिया जगदम्बा सरस्वती अलौकिक माँ के रूप में और ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता के रूप में, वैसे तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी पर अलौकिक माँ पिता सबकी पालना करने के लिए निमित्त बने और 14 साल वहाँ तपस्या की, तो कराची में 14 साल तपस्या करने के बाद 1950 में ये सारा परिवार अलौकिक परिवार भारत में स्थानांतरित हुआ और माउंट आबू में आए, तो जिस समय कराची से या पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए हिंदू लोग या सिख लोग, तो ऐसी उस समय स्थिति थी कि उनको कुछ भी लाने नहीं दिया क्योंकि वो नंगे पैर हाथ खाली भागे थे, क्योंकि डर था कि कहीं हमको मार न डाले, इतनी खून की नदियां बही, अब वो तो बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन भारत इन बहनों को कैसे सुरक्षा दी, सरकार की सुरक्षा मिली, जो वहाँ का सिंध का चीफ मिनिस्टर था उन्होंने तो खास बाबा को कहा कि ये तो देवियाँ हैं, ये बड़ी पाक है, माना पवित्र है, आप इनको आप यहीं रहें तो हमारा देश पाक बन सकता है, ये उसने कहा, लेकिन शिव परमात्मा का आदेश था कि भारत जाना है, तो 1950 में कैसे उनको संरक्षण तो पूरा मिला ही पर साथ साथ उनको कहा गया कि अगर आप भारत जाना चाहते हैं तो भले सब कुछ ले जाओ, तो कुछ भी वहाँ छोड़ा नहीं, सब बैग बैगेज इतना तैयार करके इंतजार कर रहे हैं और एक जहाज भी उनको दिया जो कराची से ये जहाज उनको भारत में लाया, ये जहाज में सब बैठे हैं करीब 385 भाई बहने 1950 में, और वो तारीख भी बताते हैं 5/5/50 5 मई 1950 को वे भारत में आए, तो कराची तो बहुत दूर नहीं है, नजदीक ही है, आप माउंट आबू गा जाएंगे तो ये पश्चिम बॉर्डर है भारत का और उसके उस तरफ पहाड़ों के पीछे ही कराची है, तो कैसे ये भारत में आए, ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में जूना जामनगर के पास ओखा, तो उस बंदरगाह पर पहुंचे और वहाँ ट्रेन वहाँ से आबू आई। ये 1950 की ट्रेन आप देख सकते हैं कैसे 1950 में इन्होंने दुनिया देखी 14 साल की तपस्या के बाद। तो सफेद वस्त्र तो पहनते ही थे, सफेद फ्रॉक और पैजामा ये उस समय पहनते थे। और भारत में आने के बाद फिर जैसे ड्रेस साड़ी की बनाई। तो ये बहने माउंट आबू में आए, और माउंट आबू जो स्थान है ये पहाड़ तो है 4000 फीट की ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है। तो यहाँ बाबा मम्मा ने आकर के तपस्या की, चारों ओर जंगल है। तो उस समय तो कोई विशेष लोग रहते नहीं थे, केवल अप्रैल मई और जून महीने में माउंट आबू में राजा महाराजा लोग आकर के गर्मी में यहाँ रहते थे माउंट आबू में। तो माउंट आबू की विशेषता है कि वहाँ बहुत सारे महल है, जो यहाँ राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है उनके राजाओं ने यहाँ महल बनाए हैं, जयपुर पैलेस, जोधपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस या भरतपुर पैलेस, ये सारे पैलेसेस है, अलवर पैलेस, सब राजस्थान। और इन्होंने ये सारे महल बनाए और यहाँ गर्मी के दिनों में आके रहते थे। और जुलाई अगस्त सितंबर ये तीन महीना बहुत बारिश पड़ती थी। अभी भी आप माउंट आबू गए होंगे, बहुत बारिश थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऊपर और नीचे में 6-7 डिग्री का फर्क है। माउंट आबू में तो इतनी बारिश है, लगातार फॉग है, बारिश है, धुंध है, कुछ दिखाई नहीं देता है। और यहाँ आओ तो जैसे कुछ भी नहीं, आज शायद मौसम खुला होगा, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो गए थे 3 दिन पहले, आप सब ने क्या देखा, बारिश ही देखी ना, हाँ, जो गए थे हाथ उठाए तो क्या देखा आपने, हाँ, बारिश में भीग करके आए, तो ऊपर इतनी बारिश, यहाँ तो बारिश ही नहीं। लेकिन वहाँ की विशेषता है ये, क्योंकि हरियाली बहुत है, चारों ओर रेगिस्तान है और माउंट आबू में इतनी हरियाली है, तो कहते ओएसिस इन अ डेजर्ट, इतनी एक रेगिस्तान में हरियाली का स्थान ये माउंट आबू है। तो 3 महीना माउंट आबू में राजा महाराजा लोग रहते थे, बाकी और कुछ नहीं होता था। और जुलाई अगस्त सितंबर बारिश, खूब बारिश, अगस्त के महीने को कहते थे डिसगस्ट, अभी जो महीना चला डिसगस्ट, इतना परेशान हो जाते थे कि कपड़े नहीं सूखते, गीले गीले कपड़े, पानी पानी पानी, सारा गीला गीला, धूप तो निकलती नहीं, ये स्थिति है माउंट आबू की इस समय। लेकिन फिर सितंबर के बाद अक्टूबर से मार्च इतनी ठंडी, जो बात मत पूछो, कोई पंखे नहीं थे पहले, ये तो अभी अभी धीरे धीरे सब बदलता गया है, तो ये सब लगाने पड़े हैं। तो बाबा वहाँ माउंट आबू में तपस्या करते थे, बहुत मंदिर है वहाँ आबू में, तीर्थ स्थान भी है, पर्यटन स्थल भी है, होटल भी है, क्योंकि जब 50 के बाद होटल बनाने शुरू किए, उसके पहले तो राजा ही रहते थे, राजा ही तो खत्म हो गई, तो उन्होंने होटल बना दिए, स्कूल बना दिए, हॉस्टल बना दिए, वो सब माउंट आबू में है। इसीलिए कैसे बाबा मम्मा ने तपस्या की और ये तपस्या करते रहे 2 साल तक, बिल्कुल और भी दुनिया की निगाहों से दूर यहाँ रहे। और 1952 में कैसे उनको निमंत्रण मिला दूसरे स्थानों का, तो आप हैं मनोहर इंदिरा दादी, कैसे 1952 में आपको दिल्ली से निमंत्रण आया, आपके परिवार वाले दिल्ली में रहते थे, तो उन्होंने इनको निमंत्रण दिया कि आप आकर के जो आपने इतना 14 साल तपस्या की है वो आकर हमें भी अपना अनुभव शेयर कीजिए। तो आप दिल्ली गए अपने परिवार में, और जैसे ही अपने परिवार में पहुंची तो रोज सवेरे सत्संग कराती थी, तो सब सुबह सुबह ये ओम की ध्वनि करती थी परिवार वालों के सामने। और जैसे ही ओम की ध्वनि करती थी तो इनके जो परिवार के सदस्य थे वो इनसे देवी का साक्षात्कार करने लगे, देवी आई है, पहाड़ से देवी उतर के दिल्ली में आई है। तो इतना सम्मान इनको मिलता था, मंदिरों से निमंत्रण मिलते थे कि आप हमारे पास आकर भाषण करें। फिर तो इतने लोग आते थे कि जगह नहीं होती थी, तो आप जमुना किनारे जाकर के अपना लेक्चर देते थे। मानो इतनी लोगों की क्रेज थी, ये 1952 की बात है। लेकिन एक मास तक लगातार इसने सत्संग कराया, बहुत लोग आते थे। और इसके बाद फिर इन्होंने कहा अभी तो वापस जाऊंगी मैं माउंट आबू, तो कोई उनको छोड़े नहीं, कही कि आप माउंट आबू जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो बाबा ने इनको कहा कि आपको अगर वो चाहते हैं कि आप रहकर उनका सत्संग कराते रहो, तो इनको कहो कि एक मकान लेकर दो, तो मकान में आप रहो और वहां सत्संग कराओ। तो इन्होंने कहा मकान लेके देंगे, क्या बड़ी बात है मकान लेना, दिल्ली में बहुत मिल जाएंगे। तो पहला सेवा केंद्र आबू के बाहर, पाकिस्तान तो छोड़ आए सब कुछ, लेकिन आबू के बाहर पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला। तो दिल्ली का पहला सेवा केंद्र, राजधानी है दिल्ली, दिल्ली वाले खुश होंगे हा? बस फिर तो उसके चारों तरफ सेवा केंद्र खुलते गए, और देखते देखते भारत के कोने कोने में बाबा के सेंटर खुले। वहां से भाई बहने माउंट आबू आते थे, हर साल आते थे। मम्मा भी माउंट आबू से जाती थी, ये लखनऊ में मम्मा गए हैं, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली के बाद यूपी में बहुत सेंटर्स खुले, एक के बाद एक यूपी में खुले, यूपी के बाद फिर पंजाब, हरियाणा, सब जगह खुलते गए, मुंबई और बेंगलोर, कर्नाटक, चारों तरफ खुलते गए। और मम्मा सब तरफ जाते थे, मम्मा के साथ दादी प्रकाशमणि जी सदा साथ रहते थे। तो मानो जैसे मम्मा के बाद 3/4 तीन हिस्सा मम्मा का पार्ट दादी जी भी बजाते थे, सब उनको भी इतना ही रिस्पेक्ट देते थे जैसे मम्मा को। और धीरे धीरे मम्मा विदेश स्थिति को प्राप्त करती गई, अशरीरी बनती गई, न्यारी बनती गई। और 1965 में मम्मा ने अपना देह त्याग किया, जब उनकी उम्र केवल 46 वर्ष थी 1965 में। और उसके बाद दीदी मन मोहिनी आप नियुक्त हुई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कभी एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ में नहीं उठाया, बहनों को सौंपा, अपनी सारी प्रॉपर्टी बहनों के नाम पर विल कर दी, खुद न्यारे हो गए। तो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा थी, फिर दीदी मनमोहिनी, आपका नाम गोपी था, और बहुत धनाढ्य थी, बहुत धनवान परिवार की थी, इनके परिवार वाले भी सारी दुनिया में इनकी बिजनेस थी। और जब ये भारत में आए तो इनके परिवार के ही सदस्यों ने मुंबई में कई शहरों में हॉस्पिटल खोले और कॉलेजेस खोले। मुंबई में जो रहते हैं वो जानते होंगे, जसलोक हॉस्पिटल, केसी कॉलेज, किशनचंद चेलाराम कॉलेज, ये सिंधियों ने खोले पाकिस्तान से आकर के। तो उन्होंने ये चारों ओर हॉस्पिटल और कॉलेजेस खोले, उस परिवार की थी आप। तो आपको बाबा ने एडमिनिस्ट्रेशन दिया, और आपने 1983 में अपना देह त्याग किया। तो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे तो बाबा बाहर निकले, ये दिल्ली में बाबा के आगे कुछ कन्याएं कुछ गीत गा रही है, और परिवार के परिवार माउंट आबू आते थे, ये जलंधर का कोई ग्रुप है तो जलंधर से भाई बहने आए हुए हैं, ये अलग अलग परिवार के परिवार साथ में हैं। तो बाबा बहुत उनको प्यार देते थे, पालना करते थे, पर सदा यही कहते थे कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, उनको याद करो। ये देहधारी है, ये तो माध्यम है, इनके द्वारा शिव परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। तो रोज बाबा सवेरे सवेरे वाणी चलाते थे, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, और बच्चों को पत्र भी लिखते थे। तो ये बाबा पत्र लिख रहे हैं, ये पत्र बाबा उर्दू में लिखते थे, तो एक बहन उनका हिंदी करती थी, क्योंकि सब तो उर्दू जैसा सिंधी तो पढ़ नहीं सकते थे, तो वो एक बहन उसका हिंदी करती थी। तो जहाँ बाबा बैठते थे वो बाबा की झोपड़ी है, माउंट आबू आप जाएंगे, जो गए हैं उन्होंने देखा होगा, और कल बाकी जाएंगे तो पांडव भवन जो मुख्य हेडक्वार्टर्स है जहाँ बाबा रहते थे साकार में, वो स्थान आप जरूर देखेंगे। ये बाबा की झोपड़ी जहाँ बाबा बैठ करके पत्र लिखते थे, दिन के समय बाबा यहाँ बैठते थे, चारों ओर बगीचा है और बाबा झोपड़ी में मिलते थे, पत्र लिखते थे। और दूसरा है ये हिस्ट्री हॉल जो पांडव भवन में है, इस हिस्ट्री हॉल में बाबा वाणी चलाते थे, जो आज भी हम लोग रिवाइज करके वाणी सुनते हैं, जिसको मुरली कहते हैं। और यहाँ पर भी हमारे क्लासेस चलते, अभी तो ये बहुत छोटा हॉल है, 200 भाई बहने भी नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो बड़े बड़े हॉल बने। ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा रहते थे। और अंत में 18 जनवरी 1969 को बाबा ने इसी स्थान पर अपने पलंग पर ही बैठे बैठे बाबा ने शरीर छोड़ा। दादी प्रकाशमणि उनके सामने थे और कैसे दादी जी को बाबा ने दृष्टि और हाथ के द्वारा सब विल पावर्स दे दी, और 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा जो संपूर्ण बने और ये साकार देह त्याग करके सूक्ष्म वतन वासी बने, अव्यक्त ब्रह्मा का पाठ शुरू हुआ। और 21 जनवरी 1969 को उनके पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया आश्रम के अंदर ही, और उस स्मारिका का नाम रखा है शांति स्तंभ। तो ब्रह्मा बाबा की यादगार का ये शांति स्तंभ है जहाँ हजारों भाई बहने हर साल 18 जनवरी पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने मधुबन पांडव भवन में पहुँचते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की यादगार के ये चार धाम है, बाबा का हिस्ट्री हॉल, झोपड़ी, बाबा का कमरा और शांति स्तंभ। तो जो पांडव भवन आते हैं वो ब्रह्मा बाबा के ये यादगार स्थान देखते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी भी उनके साथ थे, कैसे उन्होंने प्रशासन संभाला। और दादी प्रकाशमणि जी ने 2007 में 85 साल की उम्र में देह त्याग किया। तो 69 में दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी ने दोनों ने मिल करके ये सारा ईश्वरीय कारोबार अपने हाथ में लिया। शिव परमात्मा ने इनको आगे रखा और स्वयं परमात्मा शिव गुप्त हो गए, शिव शक्तियों को आगे किया। और दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी ये दो शरीर थे, लेकिन जैसे एक आत्मा होकर के कार्य किया, और ये संस्था दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ी। दादी और दीदी के साथ ये हमारी अन्य वरिष्ठ दादियां भी उनके साथ थी, जिन्होंने मिल करके इस कार्य को आगे किया। और धीरे धीरे ये संस्था विदेशों में भी गई और विदेशों से भाई बहने भी आते रहे। और 1983 में एक बहुत भव्य ओम शांति भवन पांडव भवन के सामने बनाया गया, जहाँ 3000 भाई बहने बैठ सकते हैं, जहाँ हम लोगों के नित्य कॉन्फ्रेंसेस होते रहे। फिर धीरे धीरे और विस्तार हुआ, 1991 में ज्ञान सरोवर परिसर बना, जहाँ हमारी एकेडमी चलती है, अलग अलग वर्गों के लिए कार्यक्रम चलते हैं। फिर ग्लोबल हॉस्पिटल भी बना जो माउंट आबू में है, जहाँ देश विदेश के लोग आते हैं अपना उपचार करने के लिए। गांव-गांव में हमारी सेवाएं होती है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है। और फिर 96 में जब इस संस्था के 60 साल हुए थे, तो यह डायमंड जुबली हॉल बनाया, जहाँ 20,000 भाई बहने बैठ सकते हैं। इसलिए डायमंड जुबली ईयर था 60 साल। यहाँ 20,000 बैठने की व्यवस्था है और हर साल हजारों भाई बहनें यहाँ आते हैं। दादी प्रकाशमणि जी ने 2007 में अपना देह त्याग किया और दादी जी की स्मृति में इस हॉल के सामने ही प्रकाश स्तंभ है, वहीं उनके पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया, जो दादी जी का यादगार स्थान है, क्योंकि दादी जी ने ही इस सारे कॉम्प्लेक्स को सजाया, इतना आगे बढ़ाया। और वर्तमान समय दादी जानकी जी जो 101 साल की है, वो मुख्य प्रशासिका के रूप में है, लेकिन इतनी एक्टिव है, अभी भी इतनी एक्टिव है, इस उम्र में भी अभी भी रोज क्लास कराते हैं, हजारों के बीच में आप भाषण देते हैं। और दादी जानकी के साथ सह मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी है। अभी वर्तमान समय आप दिल्ली में हैं, लेकिन अक्टूबर से आप यहाँ ही रहते हैं, अक्टूबर से लेकर मार्च तक तो यहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे कई कार्यक्रम विदेशों के भाई बहने भी यहाँ आते हैं तो रहते हैं यहाँ। और इनकी विशेषता है कि आप में शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा प्रवेश होते हैं, और प्रवेश होकर के इसी हॉल में यहाँ ही कैसे वाणी चलाते हैं, और उनको हम कहते हैं अव्यक्त बाप दादा, शिव पिता और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा। तो अव्यक्त बाप दादा की यहाँ इसी हॉल से वाणी चलती है, जो वाणी सब जगह हम रिले करते हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल में, सभी सेवा केंद्रों पर। तो जिन्होंने ये देखा है कार्यक्रम अव्यक्त बाप दादा का, वो हाथ उठाएं। अच्छा, थोड़ों ने देखा है, कईयों ने अपने घर में भी देखा होगा जिनके पास पीस ऑफ माइंड चैनल है, और बाकियों ने सेंटर पर देखा होगा। और नहीं भी अगर देखा है और आप सोचेंगे क्या हम यहाँ आ सकते हैं, हम कहते क्यों नहीं आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। कौन से नियम? एक तो शुद्ध शाकाहारी भोजन हो, व्यसनों का त्याग हो, नियमित विद्यार्थी बन करके आप क्लासेस करें, और जो भी यहाँ के और नियम है उनका पालन करें, तो आप भी यहाँ अवश्य आ सकते हैं इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए, जो अक्टूबर महीने से मार्च महीने तक चलते हैं। तो ये 6 महीने हमारे मुख्य विशेष कार्यक्रम होते हैं, जिसमें हजारों भाई बहने देश विदेश के आते हैं। तो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, 80 साल की कहानी आपको 80 मिनटों में सुना दी। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।